अपनी अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार व्यक्ति को बोध होता है। इसके दो उदाहरण पहले प्रस्तुत किए गए, एक तो ये कि न्यायिकों की जो व्युत्पत्ति है उस अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार उनको प्रथमांकार समूह के विशेषक साथ बोध होता है। दूसरा बताया गया कि लक्षणा वाक्य में या लक्षणा स्थल में आलंकारिकों को सकता विच्छेदक प्रकार का बोध होता है और न्यायिकों को लक्षता विच्छेदक प्रकार का बोध होता है। हमने कोशिश की थी आपको सकता विच्छेदक प्रकार क्या होता है, लक्षता विच्छेदक प्रकार क्या होता है समझाने के। आज एक बार फिर से और समझा देता हूँ कि जैसे उदाहरण है सिंहो मानव कह, इसका बोध होगा सिंहत्ववान मानव कह और सिंह सादृश्यवान मानव कह। इसमें पहले हम सकता विच्छेदक प्रकार का बोध क्लियर करते हैं। इसमें सिंह शब्द जो है उसका शक्य क्या है, तो सिंहत्ववान। शक्यता किसमें रहेगी, तो सिंहत्ववान में रहेगी। उसका अवच्छेदक कौन होगा, तो एक टेक्निक समझ लीजिए, जहाँ पर बाण लगा हो ना तो बाण से पहले जो रहता है वही अवच्छेदक होता है। तो शक्यता किसमें है, सिंहत्ववान में है। बाण से पहले क्या है, सिंहत्व, तो वह हो गया शक्यता अवच्छेदक। अब जैसे घटत्ववान है तो घटत्ववान में शक्य कौन हुआ, घटत्ववान। शक्यता किसमें रहेगी, घटत्ववान में। शक्यता का अवच्छेदक कौन होगा, तो बाण से पहले क्या है, घटत्व, तो घटत्व होगा शक्यता अवच्छेदक। ऐसे किसी भी शब्द में जो है ना शक्यता अवच्छेदक निकालना हो तो ऐसे ही निकाला जाता है, बाण और मान से पहले जो शब्द हो ना वह शक्यता अवच्छेदक होता है। और यही सिस्टम लक्षता अवच्छेदक में भी लागू होता है। क्या था वहाँ पर न्यायिकों का बोध, सिंह सादृश्यवान मानव कहा। तो चलिए लक्ष्य कौन है, सिंह सादृश्यवान, ये लक्ष्यार्थ है। लक्षता किसमें रहेगी, सिंह सादृश्यवान में। लक्षता अवच्छेदक कौन होगा, तो बाण से पहले क्या है, सिंह सादृश्य, तो सिंह सादृश्य हो गया लक्षता अवच्छेदक। तो आलंकारिकों को जो बोध होता है सिंहत्ववान मानव कहा, इसमें सकता विच्छेदक प्रकार होता है, विशेषण होता है, माने सिंहत्व जो है वह प्रकार के रूप में बोध में भाषित होता है। और न्यायिकों का जो बोध है सिंह सादृश्यवान मानव कहा, इसमें लक्षता विच्छेदक प्रकार होता है, विशेषण होता है। लक्षता विच्छेदक कौन है, सिंह सादृश्य। तो एक ही वाक्य है सिंहो मानव कहा, लेकिन उसी एक वाक्य में आलंकारिकों को जो है ना विशेषण कौन, आलंकारिक विशेषण को क्या, विशेषण किसको मानते हैं, सकता अवच्छेदक को। और न्यायिक विशेषण किसको मानते हैं बोध में, लक्षता अवच्छेदक को। तो यह जो अंतर आता है वह क्यों आता है, तो व्युत्पत्ति के कारण। अब एक तीसरा भी उदाहरण बताते हैं, एक वाक्य घटम आनय, तो घटम आनय में आप अगर अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो चार टुकड़े होंगे, एक होगा घट, दूसरा होगा अम, अम विभक्ति घटम में, तीसरा होगा आनय में, आनयन धातु अन आंग पूर्वक नी धातु, और आनय में सिप प्रत्यय है, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो सिप प्रत्यय। इस तरह से चार चीजें अगर प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कर देंगे तो चार टुकड़े होंगे, घट, अम, आंग पूर्वक नी धातु और सिप प्रत्यय। अब इन चारों से एक एक अर्थ निकलेगा, घट का अर्थ घट होगा, घटः, अम का अर्थ होगा कर्मत्वम, आंग पूर्वक निधात का अर्थ होगा आनयनम, और सिप प्रत्यय जो है उसका अर्थ होगा कृति, क्योंकि न्यायिक लोग प्रत्यय का अर्थ कृति मानते हैं। तो इस तरह से घटम आनय में न्यायिक जब सुनते हैं इसको ना, तो उनको ये चार अर्थ यहाँ पर उनको भाषित होते हैं। क्या क्या पंक्ति देखिए किताब में, घटः कर्मत्वम आनयनम कृति ही, घटम आनय में उनको ये चार जो है ना अलग अलग अर्थ भाषित होते हैं, घटः कर्मत्वम आनयनम और कृति, इस तरह से चार अर्थ भाषित हुए उनको। इति विपर्ययेनापि व्युत्पन्नानां नैयायिक नव्यादीनां मोधः। जैसे व्याकरणों में दो व्याकरण है प्राचीन और नवीन, ऐसे ही न्यायिकों में भी दो होते हैं, प्राचीन न्यायिक और नवीन न्यायिक। तो नैयायिक नव्य जो है माने नवीन नैयायिक जो है वो विपर्यय न व्युत्पन्ना नाम, विपर्यय माने उल्टे तरीके से विपरीत प्रकार से जो व्युत्पन्न नव्य नैयायिक हैं उनके मत में इसमें भी शाब्दबोध होता है। घटः कर्मत्वम आनयनम कृति में शाब्दबोध वो मानते हैं। न तो तद व्युत्पत्ति रहता नाम, क्योंकि उनमें वैसी ही व्युत्पत्ति है, वैसा ही संस्कार है, और उस संस्कार के कारण इसमें घटः कर्मत्वम आनयनम कृति में शाब्दबोध वो स्वीकार करते हैं। लेकिन जिनमें ये व्युत्पत्ति नहीं है, उस तरह का संस्कार नहीं है, व्युत्पत्ति रहित हैं, उनको वहाँ पर शाब्दबोध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें आकांक्षा का वो लोग अभाव मान, जैसे हम ही लोग हैं, व्याकरण है, तो व्याकरणों को इसमें कोई शाब्दबोध नहीं होगा। घटः कर्मत्वम आनयनम कृति में शाब्दबोध नहीं होगा व्याकरण को। क्यों? क्योंकि व्याकरणों का स्पष्ट मानना है कि जहाँ आकांक्षा रहती है वहीं शाब्दबोध होता है। यहाँ पर जो चार पदार्थ हैं, इन चारों पदार्थों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है, एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा का अभाव है, आकांक्षा का अभाव है, साकांक्ष पदार्थ नहीं है, इसलिए शाब्दबोध नहीं होता। तो वही आगे कहते हैं कि अन्येषाम, अन्येषाम माने व्युत्पत्ति, तादृश व्युत्पत्ति रहता नाम, उस नव्य नैयायिक की तरह व्युत्पत्ति जिनके पास नहीं है उनको तन निराकांक्षम एवं, यह जो घटः कर्मत्वम आनयनम कृति है यह साकांक्ष नहीं, उनको निराकांक्ष समझ में आता है। नव्य नैयायिकों को वही साकांक्ष समझ में आता है, लेकिन अन्य को निराकांक्ष समझ में आता है, इसलिए उनको शाब्दबोध नहीं होता है। तो इस तरह से ये तमाम बातें जो हैं, सारी बातें जो हैं वो ये सिद्ध करती हैं कि शाब्दबोध जो होता है, अर्थात कौन विशेष होगा, कौन विशेषण होगा, यह जो फाइनल होता है, यह जो निर्णय होता है वह व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही सबको होगा, इस तरह से कोई फिक्सेशन नहीं है। अब एक लास्ट में जो है ना, सबसे बड़ी बात बताते हैं, पाणिनी का प्रमाण देते हैं कि यह जो है कि प्रत्यार्थ जो है वह प्रधान होता है, विशेष होता है, इसका खंडन करने के लिए पाणिनी का प्रमाण दिया जा रहा है। पाणिनी का सूत्र है एक, प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्। ये पाणिनी का सूत्र है, प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का 56वां सूत्र है, ऐसा भगवान पाणिनी ने कहा। इसको थोड़ा सा तोड़ करके देखिए, प्रधान प्रत्यार्थ वचनम माने प्रत्यय का अर्थ जो है प्रधान होता है, ऐसा जो वचन है वह नहीं करना चाहिए। इसमें यद्यपि नौ नहीं है इस सूत्र में, लेकिन नौ की अनुवृत्ति आती है। इससे पहले एक सूत्र है, तदो शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। तो तदो शिष्यम, तत् अशिष्यम, ये अशिष्यम में जो अ है माने न है, उस नौ की अनुवृत्ति इसमें आती है, और उस नौ को जोड़ करके कहेंगे तो क्या होगा कि प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अशिष्यम माने नौ शिष्यम, नौ कार्यम, नौ कर्तव्यम, माने प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है, इस तरह का वचन नौ कार्यम माने नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, क्योंकि अर्थ कौन प्रधान होगा नहीं होगा ये उसमें प्रमाण जो है वह कोई अन्य ही प्रमाण होता है, उसमें वचन से जो है ना वह निर्धारित नहीं होता। तो वह अन्य कौन है? तो वही है व्युत्पत्ति। तो अन्य का अर्थ यहाँ समझना है व्युत्पत्ति। अन्य प्रमाणत्वात् माने व्युत्पत्ति प्रमाणत्वात्, माने व्युत्पत्ति रूपी प्रमाण से ही जो है वह फाइनल होता है कि कौन अर्थ प्रधान होगा, कौन अर्थ प्रधान नहीं होगा। इसके लिए कोई वचन नहीं बनाना चाहिए, कोई सूत्र नहीं बनाना चाहिए, कोई वार्तिक नहीं बनाना चाहिए, यही अभिप्राय है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अशिष्यम, अशिष्यम की अनुवृत्ति ले आएंगे माने प्रधान प्रत्यार्थ होता है ऐसा वचन शिष्य नहीं है, कार्य कर्तव्य नहीं है, नहीं कर ऐसा शासन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वह अन्य प्रमाण होता है माने व्युत्पत्ति के अधीन होता है। इत्याह भगवान पाणिनी, ऐसा जो है भगवान पाणिनी ने कहा है। तो अब बताइए इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा? ये जो मीमांसक लोग हमें डराते थे कि प्रत्यार्थ प्रधानम यह नियम है, इस नियम से विरोध होगा, तो विरोध होगा तो होगा, क्योंकि इस नियम को हम सार्वत्रिक नियम मानते ही नहीं है। भगवान पाणिनी ने भी बोला है कि प्रधान प्रत्यार्थ वचन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो अपनी अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार ही जो है ना प्रधान और अप्रधान का निर्णय होता है। यही बात भूषणकार आगे बताते हैं, प्रधानम प्रत्यार्थ इति वचनम न इति अनुवर्त्य न कार्यम, ऐसा अर्थ होगा सूत्र का कि प्रधान प्रत्यर्थ होता है ऐसा वचन, न कार्यम, ऐसा वचन नहीं करना चाहिए। वचन करना मतलब सूत्र बनाना या वार्तिक बनाना, तो इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। क्यों? तो अर्थस्य, अर्थस्य माने तथा बोधस्य, तथा बोधस्य माने प्रत्यर्थ प्रधान होता है। इस तरह का जो शाब्द बोध है वह अन्य प्रमाणत्वात् व्युत्पत्ति अनुसारित्वात्, यह जो है व्युत्पत्ति के अनुसार ही होता है। जिसमें मीमांसकों के में ये व्युत्पत्ति है तो उनको प्रधान प्रत्यर्थ होता है उनके यहाँ, और व्याकरणों के यहाँ जो है ना ऐसी व्युत्पत्ति नहीं है प्रधान प्रत्यर्थ वाली, तो उनको जो है ऐसा शाब्द नहीं होता। एवं सत्यपि, कहा कि इस तरह से यद्यपि वास्तविक स्थिति यही है कि पाणिनि ने भी खंडन किया है प्रधान प्रत्यर्थ को, और ये भी पहले बताया गया कई उदाहरणों के द्वारा कि व्युत्पत्ति के अनुसार ही जो है प्रधान अप्रधान का निर्णय होता है। फिर भी अगर आपको किसी नियामक की जरूरत है, किसी वचन की अगर जरूरत है इस बात को सिद्ध करने के लिए, तो मैं वह वचन बताता हूँ। क्या? कि प्रधान कि भाव प्रधानम आख्यातम इति वचनम एव गृह्यताम सुधी भी उह्यम। कहा कि यद्यपि आपको वचन की जरूरत नहीं है इसमें कि साधबोध में कौन प्रधान होगा कौन प्रधान नहीं होगा, फिर भी आपको अगर कोई वचन चाहिए ही चाहिए तो लीजिए। या महर्षि यास्क का वचन प्रमाण है, वह वचन क्या है कि भाव प्रधानम आख्यातम, आख्यातम माने तिंगंतम, तिंगंत स्थल में कौन प्रधान होता है, तो भाव प्रधान होता है। भाव माने व्यापार, व्यापार जो है प्रधान होता है तिंगंत स्थल में। कैसे पचति भवति सब रहेगा, तो उसमें ये व्यापार ही प्रधान शाब्द बोध में भाषित होगा। तो इस वचन के आधार पर व्याकरणों ने मान लिया है कि व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। ठीक है, तो ये जो बाधक इन्होंने बताया था मीमांसकों ने व्याकरणों को कि प्रधानम प्रत्यर्थः ये आपके मत में बाधक है, उसको हमने खंडित कर दिया कि नहीं, ये हमारे यहाँ बाधक नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। हम किसको मानते हैं? हम भाव प्रधान माख्यातम को मानते हैं। अब दूसरा इन्होंने जो कहा था, तदागमे ही दृश्यते न्याय की बात की थी, मैं याद दिला देता हूँ। तदागमे ही दृश्यते न्याय ये है कि जिस शब्द के आने पर जो अर्थ प्रतीत हो, जिस शब्द के चले जाने पर जो अर्थ प्रतीत न हो, वही उस शब्द का अर्थ माना जाता है। तो पचति में ती के रहने पर जो है व्यापार अर्थ प्रतीत होता है, पाचकह में ती के नहीं रहने पर व्यापार अर्थ प्रतीत नहीं होता है। इससे सिद्ध हुआ कि ती का अर्थ व्यापार होता है। ये जो बात बताई थी मीमांसकों ने, उसके लिए अब खंडन आ रहा है। कहते हैं कि तदाग में ही इति न्यायो अभिवर्णन च। अच्छा, एक तो न्याय को उन्होंने प्रस्तुत किया था, दूसरा विवरण बताया था कि पचत का विवरण होता है पाकम करोति, इसमें ती का ही अर्थ है करोति। इसके आधार पर भी जो है ती का अर्थ व्यापार मानना चाहिए, क्योंकि करोति क्या होता है, व्यापार ही होता है। तो दो बातें जो इन्होंने बताई थी, पहले कि तदागमे ही दृश्यते इस न्याय के आधार पर, और विवरण के आधार पर प्रत्यय का अर्थ ही व्यापार मानना चाहिए, ये जो कहा था वो सही नहीं है, क्योंकि अतिव्याप्तम, इस बात में अतिव्याप्ति दोष है। अब अतिव्याप्ति दोष क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, मैं केवल याद दिलाता हूँ कि अलक्ष्य में लक्षण अगर जाता है तो अतिव्याप्ति होती है। जैसे गो का अगर लक्षण कर रहे हैं, वह लक्षण अगर भैंस में चला जाए, घोड़ा में चला जाए, तो वह उस लक्षण को अतिव्याप्त लक्षण माना जाएगा, क्योंकि लक्ष्य क्या है गो, अलक्ष्य क्या है भैंस, तो भैंस में चला गया ना, अलक्ष्य लक्षण गमनम अतिव्याप्त ही। तो यह जो तदागमे ही दृश्यते न्याय है और विवरण जो है यह अतिव्याप्त है, माने अतिव्याप्त दोष से ग्रस्त है। कैसे है तो आगे बताते हैं कि किं कृतम, ये प्रश्न किया जाता है किं कृतम, कृतम जो है माने व्यापार है, माने क्या कर रहा है, तो उसका जवाब दिया जाता है पक्वम। अब बताइए पक्वम में तो ती प्रत्यय नहीं है ना, व्यापार अर्थ यहाँ पर नहीं है, फिर भी किं कृतम जो व्यापार संबंधी प्रश्न है उसका जवाब दिया जाता है पक्वम के आधार पर। तो यह जो सवाल और जवाब हैं इसके आधार पर ये सिद्ध हुआ, आप जो विवरण को प्रमाण मानते थे तो यहाँ पर वह आपका विवरण अति व्याप्त है, क्योंकि ये अलक्ष्य में जा रहा है, क्योंकि पूछा जा रहा है किम कृतम और जवाब दिया जा रहा है पक्वम से। पक्वम में तो धातु का अर्थ केवल आप फल मानते हो ना, तो फल का ही फल ही जवाब के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है पक्वम। इस तरह से विवरण के आधार पर आप जो है साबित नहीं कर सकते कि ति प्रत्यय का अर्थ व्यापार होता है। यहाँ पर जो है अलक्ष्य में लक्षण जा रहा है, अलक्ष्य कौन है पक्वम। अलक्ष्य क्यों है, क्योंकि लक्ष्य तो है पचति और अलक्ष्य क्या है पक्वम। कृदंत जो है वह हो गया अलक्ष्य और तिंगंत जो है वह हो गया लक्ष्य। तो यहाँ जो विवरण के आधार पर आप अगर साबित करेंगे तो यहाँ पक्वम में जो है आपका विवरण जा रहा है, क्योंकि व्यापार का संबंधी प्रश्न का उत्तर पक्वम की तरह कृदंत शब्द से कहा जा रहा है, तो कृदंत में भी ये विवरण जा रहा है ना। इस तरह से ये अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हुआ, जबकि क्या होना चाहिए, विवरण केवल तिंगंत स्थल में ही व्यापार का विवरण होना चाहिए, कृदंत स्थल में व्यापार का विवरण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ किं कृतम व्यापार पूछा जा रहा है और कृदंत पक्वम की से जवाब दिया जा रहा है, तो विवरण तो ये भी है, लेकिन इसके आधार पर जो है ये सिद्ध नहीं होता कि ती का अर्थ व्यापार है। वही कहते हैं क्रिया विवरणम, क्रिय धातु के द्वारा यहाँ विवरण होना और प्रतीतिश्च पक्वम इत्यत्रापि। क्रिय के धातु के द्वारा यहाँ विवरण है और प्रतीति भी है, माने उसका वह ज्ञान उसका अनुभव भी होता है। कहाँ पर, पक्वम में। कैसे अनुभव हुआ, प्रश्न में जो किं कृतम है इसमें क्रिय धातु के द्वारा व्यापार की प्रतीति हुई और पक्वम कह देने से भी जो है व्यापार की प्रतीति लोक में होती है। इस तरह से आपका जो विवरण वाला जो आधार है प्रमाण है वह अति व्याप्त हो गया। इति तत्रापि भावना वाच्यास्यात्, इसलिए आपको क्या करना होगा, इस विवरण के आधार पर माने किं कृतम तो पक्वम, इस विवरण के आधार पर जो है आपको यहाँ जो कृत प्रत्यय है पक्वम में कौन सा प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है, पच धातु से अक्त प्रत्यय होने पर पक्वम बनता है। तो यहाँ पर अक्त प्रत्यय जो है पक्वम में उसका भी भावना वाच्या भावना अर्थ जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा, व्यापार अर्थ स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि विवरण में तो यही है, क्योंकि पूछा जा रहा है व्यापार तो जवाब भी तो व्यापार ही दिया जाएगा ना, जबकि व्यापार अर्थ निकल नहीं रहा है, यहाँ पर तिंग नहीं है, क्या है कृत है, तो कृत प्रत्यय का ही अर्थ आपको यहाँ पर व्यापार मानना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि ननु अस्तु तिंग इव कृतामपि भावना वाच्या। अब मीमांसक कहते हैं हार थक करके कि किं कृतम पूछा जाता है व्यापार के बारे में और जवाब दिया जाता है पक्वम, तो चलिए यहाँ पर हम तिंग, जैसे तिंग का अर्थ व्यापार मानते हैं ना, वैसे यहाँ पर हम कृत का अर्थ भी व्यापार मान लेंगे। वही कहा ननु अस्तु तिंग इव कृताम अपि भावना वाच्या, तिंग की तरह कृत प्रत्यय का भी जो है हम भावना अर्थ स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसा करने से यहाँ विवरण जो है अति व्याप्त नहीं होगा, क्योंकि फिर हमारा लक्ष्य जो है तिंगंत भी रहेगा और कृदंत भी रहेगा, तो अलक्ष्य में लक्षण गमन नहीं होने से अति व्याप्ति दोष नहीं होगा। इस पर जो है न वैयाकरण कहते हैं कि तब तो और गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, आपको दो दो जगह शक्ति माननी पड़ेगी, तिंग में शक्ति माननी पड़ेगी व्यापार अर्थ की और कृत में शक्ति माननी पड़ेगी व्यापार अर्थ की, तो गौरव होगा आपके यहाँ। अरे ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो दोनों जगह, जैसे पचति में भी पच धातु है और पक्वम में भी पच धातु है, तो पच धातु का ही अर्थ व्यापार मान लीजिए ना, तो एक ही में शक्ति माननी पड़ेगी धातु में, उसी से व्यापार अर्थ निकल जाएगा, दो दो का अर्थ मानना नहीं पड़ेगा, गौरव नहीं होगा। वही कहा तथा च उभय साधारण ये न तत्प्रतीते है, उभय साधारणो धातु एवं वाचक, उभय साधारण जो कृदंत में भी रहता है और तिंगंत में भी रहता है, तो यह उभय साधारण कौन है, धातु है, उस धातु को ही वाचक मानिए, प्रत्यय को मत मानिए। अगर प्रत्यय को वाचक मानेंगे तो क्या होगा, प्रत्यार्थत्वात् प्राधान्यापत्ति, फिर वह प्रत्यार्थ प्रधान होने लगेगा, जैसे छागी अश्वा में बताया था ना उस तरह से। तो आज का पाठ यहीं पर छोड़ते हैं।